आविर्भाव दिवस था, उनका जन्म नरसिंह चतुर्दशी। भगवान केवल प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट होते हैं। हमारे जैसे उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, हम हमारे कर्मों से बद्ध हैं, इसलिए जबरदस्ती किसी माँ के गर्भ में हमें जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अपने अलग अलग रूपों में इस धरातल में या इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो उनके ये सारे रूप दिव्य होते हैं, सच्चित आनंद होते हैं। अर्थात इस भौतिक शरीर की तरह नश्वर नहीं होते, और ये दिव्य रूप भगवान की आध्यात्मिक या अंतरंगा शक्ति के द्वारा होते हैं। कोई उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हम जब जन्म लेते हैं तो कर्म के बंधन से, प्रकृति के नियम से जबरदस्ती हमें आना पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। वो स्वेच्छा से आते हैं, जब वो चाहें आते हैं, जिस रूप में चाहें वैसे आ सकते हैं, और जितना देर यहाँ ठहरना चाहें उतना देर ठहर कर वापस चले जा सकते हैं। हम न तो जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिए जाते हैं, लेकिन किस रूप में हमें आना है वो भी हमारे हाथ पर नहीं होता। अगर हमने बहुत पाप कर लिए होते हैं तो हमें पशु का शरीर मिलता है, और पुण्य किया होता है तो एक मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन मनुष्य जीवन के भीतर भी अलग अलग प्रकार के शरीर मिल सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, और भगवान का हरेक रूप दिव्य रूप होता है। हम हमारे साधारण व्यवहार में भेदभाव करते हैं, और एक पशु एक अशुद्ध प्राणी माना जाता है। पक्षी, पशु, कीड़े इत्यादि ये मनुष्य शरीर के बराबर नहीं माने जाते, और मनुष्य योनि में भी ऊंच नीच की धारणा होती है। तो इस प्रकार से 84 लाख योनियां होती हैं। लेकिन भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो इन 84 स्वीकार करके यहाँ आते हैं। जैसे कि भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया और वराह देव के रूप में प्रकट हुए, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल अनुकूल है, उचित है, वैसा ही वो एक रूप धारण करते हैं। क्योंकि पृथ्वी माता गर्भोदक सागर में गिर पड़ी थी और उनको नीचे जाकर उठाना था जल से, तो इस कार्य के लिए शुक्र का रूप बिल्कुल उपयुक्त था, इसलिए भगवान ने ये रूप धारण किया। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस जगत में जो शुक्र होता है, कहीं गंदे जगह में जाकर अपनी सोत नीचे डाल के कुछ न कुछ अपना खाद्य पदार्थ निकालता है। तो क्योंकि पृथ्वी माता बहुत नीचे के स्थान में जल में गिर पड़ी थी, तो भगवान ने ये शुक्र का रूप स्वीकार किया। उसी प्रकार से जब प्रलय हुआ और राजा सत्यव्रत अकेले पड़ गए, तो उनके सामने जैसे कि भगवान ने पहले ही उनको वचन दिया था, वो प्रकट हुए, लेकिन एक मछली के रूप में। क्योंकि जब सृष्टि में प्रलय हो जाता है, सब जगह पानी भर जाता है, केवल पानी ही पानी, बड़े से बड़े पहाड़ जो होते हैं हिमालय में, वो भी पानी में डूब जाते हैं, तो कौन बच सकता है ऐसे प्रलय में। लेकिन राजा सत्यव्रत भगवान श्री हरि के भक्त थे, इसलिए भगवान ने केवल सत्यव्रत राजा के उद्धार के लिए ये विशेष रूप धारण किया, जो कि जल के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। अब जल में कौन सा प्राणी रहता है? मछली। इसलिए भगवान ने मछली का शरीर धारण कर लिया और मत्स्य अवतार कहलाए। उसी प्रकार से जब बलि महाराज का उद्धार करना था भगवान, क्योंकि बलि लेकिन उनका जन्म असुर कुल में हुआ था और असुर और देवताओं में हमेशा युद्ध रहता है और असुरों ने देवताओं से उनका राज्य छीन लिया था और देवतागण भगवान के भक्त होते हैं तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आपको कोई मार्ग निकालना है। तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप स्वीकार किया और वो भी एक बटु ब्रह्मचारी का। तो और वो राजा के दरबार में गए। जब किसी के घर में किसी के दरबार में कोई एक ब्रह्मचारी आता है या एक ब्राह्मण आता है तो उसको दान देना हमारा धर्म रहता है। आजकल ये धर्म का पालन बहुत कम होता है लेकिन पूर्व काल में वैदिक सभ्यता के अनुसार ये अनिवार्य माना जाता था और दुष्ट से दुष्ट लोग भी इस तरह प्रकार के साधुओं को ब्राह्मणों को इत्यादि दान दिया करते थे। जैसे कि जरासंध, जरासंध इतना बड़ा असुर था, श्री कृष्ण का दुश्मन था। 17 बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से हरा दिया जरासंध को। 18वीं बार जब जरासंध मथुरा को आक्रमण करने के लिए आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला प्रदर्शन की और उन्होंने सोचा कि बार बार इसको हराता हूं फिर भी ये नहीं सीख रहा है, अभी हमारे मथुरा निवासियों को क्यों कष्ट दूं। तो उन्होंने अपने योग शक्ति से सारे मथुरा निवासियों को, जबकि वो निद्रा की अवस्था में थे, उनको स्थानांतरित करके द्वारका में ले गए। और जब ये सारे निवासी उठे सुबह नींद से तो उन्होंने देखा कि हम कोई नए स्थान में आए हैं समुद्र के तट पर। हम तो थे मथुरा में कल जब रात को सोए और सुबह उठे तो हम द्वारका में। तो ये भगवान की योग शक्ति है। और फिर भगवान वहां से चले गए मथुरा से। तो कंस जरासंध इतना बड़ा शत्रु था कृष्ण का कि उसके बाद भी कृष्ण का हमेशा वो निंदा करता रहा कि कृष्ण वास्तव में रणभूमि को छोड़कर भाग गए हैं, कृष्ण एक कायर है, कृष्ण क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है, बहुत नीच है, इस प्रकार की निंदा करने लगा। वास्तव में भगवान के भक्त कृष्ण के इस लीला का गुणगान करते हैं। जिस कार्य को जरासंध निंदा करता था उसी कार्य को भगवान श्री कृष्ण के भक्त उसका गुणगान करते हैं। जरासंध ने धिक्कारा श्री कृष्ण को और कहा कि ये तो कायर है, रणभूमि छोड़ के भाग गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनको रणछोर से नाम से जानते हैं, रणछोर जो रण को छोड़कर चला गया। और ऐसे आनंदित होकर भक्त उनका कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान की शक्ति क्या है। ये तो भगवान की लीला थी। जरासंध जैसे छोटे मोटे मामूली असुरों का वध करना भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई मामूली बात, कोई कठिन बात नहीं थी, बहुत आसान बात थी। लेकिन भगवान ने ये एक लीला रचाई। लेकिन जरासंध जैसा भी एक दुष्ट असुर जब उसके दरबार में श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश पहनकर आए तो भी हालांकि वो जानते थे कि ये तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, वेश बदल कर आए हैं, लेकिन इनके रूप रेखा से, इनके उठने बैठने के बोलने के ढंग से पता चल सकता है कि ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ब्राह्मण का वेश पहनकर आए हैं इसलिए उनको दान देना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। इसका मतलब है कि दुष्ट से दुष्ट असुर भी जो हुआ करते थे वो भी इस धर्म का पालन करते थे। तो इसलिए भगवान ये जानते थे कि बलि महाराज ये असुर कुल में जन्मे हैं और जब तक कि मैं कोई ब्राह्मण का या ब्रह्मचारी का रूप लेकर नहीं जाऊंगा वो मुझे दान नहीं देंगे, और अगर मैं दान ले लूंगा तो उनसे सब कुछ मैं छीन लूंगा और मेरे भक्त जो देवतागण हैं उनको उनका राज्य लौटा दूंगा। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण बटु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। इस प्रकार से भगवान ने विभिन्न प्रकार के रूप धारण किए इतिहास में, लेकिन ये सारे रूप दिव्य ही हैं, सच्चिदानंद ही हैं। जब भगवान मछली का रूप धारण करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक साधारण या असाधारण मछली है। जब वो ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं तो तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये भी कोई एक ब्राह्मण ही है या एक शुकर है। नहीं, हर अवस्था में, हर अवतार में, हर रूप में भगवान भगवान ही रहते हैं। यह है भगवान की विशेषता। जैसे मान लीजिए कोई राजा है और राजा को नाट्य लीला करना पसंद है, और वो राजा कभी भी एक नौकर का रूप धारण करता है मंच के ऊपर और नाट्य करता है, और कभी वो चौकीदार की लीला करता है कि मैं चौकीदार हूं, ऐसे नाटक करता है। कभी कभी वो और किसी का रूप धारण कर लेता है। इससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब वो मंच पर है कि ये कोई चौकीदार है, ये कोई नौकर है। नहीं, असलियत में वो तो राजा है, केवल एक नाट्य लीला कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये तो भगवान ही है, केवल अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने भी एक बहुत ही विशेष, अद्भुत, विचित्र रूप धारण किया था, वो कि इन 84 लाख योनि में है ही नहीं। वैसे आमतौर से जब भगवान अवतार लेते हैं तो किसी भी एक योनि में अपना रूप धारण करते हैं, मछली का हो, शुकर का हो, मनुष्य का हो, देवता का हो। लेकिन एक बार भगवान ने ऐसा एक रूप धारण किया जो कि किसी भी 84 लाख योनियों में नहीं है, बल्कि 84 लाख योनियों में से 2 योनियों का मिश्रण है। ऐसे भी भगवान के कई अवतार हुए हैं, और इनमें से ही एक था भगवान नरसिंह देव का रूप, जिसमें उन्होंने अपना आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का, ये अद्भुत रूप में वो प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति के लिए, जिस हेतु वो प्रकट हुए थे, उसके लिए ये एक उपयुक्त रूप था। आप जानते हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए वो आए थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि कोई भी मेरी हत्या नहीं कर पाए। जो आपके सृष्टि में जितने भी सारे प्राणी हैं, आपने बनाए हुए 84 लाख योनियों में से किसी भी एक प्राणी को मुझे मारने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं मेरी मृत्यु होनी चाहिए। दिन में नहीं, रात में नहीं, आकाश में नहीं, जमीन पर नहीं, पानी में नहीं, अस्त्र शस्त्र से नहीं, हाथों से नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो इतना सब होने के बाद जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था तो भगवान सोचने लगे कि ये हिरण्यकश्यप इतना अत्याचार कर रहा है, इतना उपद्रव मचा रहा है सारे ब्रह्मांड भर में, और सभी लोग, मनुष्य, प्राणी, देवतागण, सभी लोग बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं ये हिरण्यकश्यप की वजह से। कितने पाप कर रहा है ये, तो मुझे कोई ना कोई अवतार लेकर इसका वध करना चाहिए। लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसा कौन सा अवतार ले सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया है कि कोई भी 84 लाख योनियों में से एक योनि नहीं होना चाहिए। तो फिर भगवान ने तरकीब सोची, सिंह की योनि भी नहीं, मनुष्य की योनि भी नहीं, एक मिश्रण, और ऐसा रूप लेकर आए और प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का वध किया एक ऐसे समय जो कि सूर्यास्त का समय था, न ही दिन न रात, और ऐसे जगह में उसका वध किया जो कि आकाश में नहीं था, जमीन में नहीं। उन्होंने अपने गोदी में बिठाकर उनका, हिरण्यकश्यप का वध किया, नहीं अस्त्रों से, नहीं हाथों से, अपने नाखून से, अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वक्षस्थल फाड़ दिया, और जो अथड़ियां हैं, अंथड़ियां, उसको हार माला के रूप में पहन लिया। इस प्रकार से सबसे चतुर हैं भगवान। कोई कितना भी वरदान क्यों ना दे, अगर भगवान किसी को मारना चाहे तो कोई ना कोई मार्ग उठाकर उसका वध कर सकते हैं। ब्रह्मा जी का वरदान उन्होंने बनाए रखा, उसको छुआ भी नहीं, और ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य रख कर इतनी चतुराई से भगवान ने ऐसा एक रूप धारण किया और ऐसे परिस्थिति में हिरण्यकश्यप का वध किया कि ब्रह्मा जी भी खुश हुए, देवतागण खुश हुए और हिरण्यकश्यप भी कुछ बोल नहीं पाए कि ये तो धर्म के खिलाफ है, ऐसा नहीं बोल पाए। तो ये है भगवान। भगवान सबसे बुद्धिमान है, सबसे चतुर है, कोई उनको धोखा नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर लिया। गीता में भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रकट होता हूँ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं नरसिंहदेव की लीला में कि उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को बचाया। वास्तव में क्या भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए आए थे? आपको क्या लगता है, नरसिंहदेव का प्रकट होने का असली कारण क्या था? हिरण्यकश्यप का वध करना? आप क्या सोचते हैं, किस लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए थे? प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद को आनंद देने के लिए। ये भगवान चाहते हैं। भगवान वैसे ज्यादा असुरों से ज्यादा लेना देना उनका नहीं होता है। अगर असुरों का वध करना है तो आसानी से भगवान अपने धाम में रहकर ही कर सकते हैं। उसको अंदर ही अंदर से कोई हार्ट अटैक, हृदय का धड़कन दे सकते हैं और वहीं के वहीं वो खत्म हो सकता है। उनको यहाँ आकर इतना कष्ट लेकर फिर युद्ध करना, ये सब लीला करना, नाटक करना, ये सब क्यों आवश्यक है भगवान के लिए? केवल अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं भगवान। और जो अन्य भक्त होते हैं ब्रह्मांड में, जैसे देवतागण, वो भी जब ये देखते हैं कि भगवान इतने अद्भुत रूप धारण करके ऐसी सुंदर लीला प्रकट करते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। और जब भगवान देखते हैं कि उनको भक्तों को प्रसन्नता हो रही है तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये होता है भगवान और उनके भक्तों के बीच में आनंद का आदान प्रदान। जिस प्रकार से कोई माता पिता होते हैं, जब वो खुश हो जाते हैं तो ठीक है, वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे खुश हो जाते हैं तो उस प्रसन्नता में उनको ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो खिल खिल कर हंसता है और बहुत ही आनंद से नाचने लगता है तो माता पिता को कितना ज्यादा आनंद आता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों को आनंद आ रहा है तो उनको इतना आनंद आता है कि वो खुद के आनंद से बढ़कर होता है। इसलिए भगवान कोई न कोई हमेशा बहाना ढूंढते हैं कि कैसे मेरे भक्तों को मैं खुश करूं। जिस प्रकार से भक्त हमेशा ये देखते हैं कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें, वास्तव में भगवान को प्रसन्न करना यही हमारे एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। अतः पुंबित विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भी हमारे संसार में कार्य होते हैं, ये सारे कार्यों की सफलता ये है कि हम भगवान श्री हरि को संतुष्ट करें, उनको खुश करें। तो भक्तों का कार्य एक ही रहता है, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को खुश करें। तो भगवान देखते हैं कि अरे, मेरे भक्त मुझे खुश करने के लिए इतना सब कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो भगवान और भक्त के बीच में प्रतियोगिता होती है। भगवान देखते हैं कि भक्त इतना कष्ट लेते हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान सोचते हैं कि मैं मेरे भक्तों से कोई कम नहीं हूं। अगर मेरे भक्त इतना सब कर रहे हैं मुझे प्रसन्न करने के लिए तो मैं क्या चुप बैठ सकता हूं? मैं भी ऐसे ऐसे कार्य करूंगा जिससे मेरे भक्त ज्यादा प्रसन्न होंगे। और भक्त देखते हैं कि अरे, भगवान इतना सब कर रहे हैं हमें प्रसन्न करने के लिए, हम कैसे चुप बैठ सकते हैं। तो भक्त और भी सेवा करते हैं भगवान की, भगवान को और प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रकार से ये असीमित प्रतियोगिता चलती रहती है भक्तों के और भगवान के बीच में। तो कितनी सुंदर बात है, ये सब चीजें केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान जब नरसिंहदेव जैसे अलग अलग अद्भुत रूपों में प्रकट होते हैं तो खास करके अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। हिरण्यकश्यप को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन प्रहलाद को वो प्रसन्न करना चाहते थे, प्रहलाद की रक्षा करना चाहते थे। जब माता पिता अपने हाथों से अपने बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं, ये कहानी आपने पहले सुनी होगी अकबर और बीरबल की, वैसे कई कहानियां हैं। एक बार जब अकबर वो हिंदू धर्म को पढ़ रहे थे, गीता भागवत पढ़ रहे थे, तो गीता पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम। तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा कि अरे बीरबल, तुम्हारे धर्म में ये बताया जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं और वो दुष्टों का नाश करते हैं, आके इतने बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने वध किया है, तो तुम्हारे भगवान के को इतने दूर से आना पड़ता है किसी एक आदमी का वध करने के लिए? क्या उनके कोई सेनापति और कोई शक्तियां नहीं है क्या? उनको खुद एक आदमी को मारने के लिए इतने दूर से वैकुंठ से वो भी आना पड़ता है? और राजा भी होता है, अगर कोई चोर वगैरह डाकू होता है अपने सेना को भेज देता है कि उसको मार डालो, राजा तो खुद नहीं जाता है। तो बीरबल ने कहा, बादशाह जी आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, थोड़े दिन में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा समय बीत गया। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अकबर अपने छोटे से पोते के साथ में, उनके बेटे के बेटे के साथ में एक नौका विहार के लिए जमुना जी में चला गया, नदी में। और उस नौके में अकबर बैठे थे, उनका पोता जो छोटा बच्चा था वो बैठा था, और बीरबल भी था, और साथ वाले नौके में वहां थोड़े सिपाही उनके संरक्षण के लिए आ रहे थे। तो नौका में चलते चलते अकबर और बीरबल दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, जैसे कि हुआ करती थी, और उनका लक्ष्य, उनका ध्यान बच्चे से थोड़ा हट गया। बच्चा इधर उधर खेलते खेलते पानी में कुछ देख रहा था, अचानक पानी में गिर पड़ा। जब पानी में बच्चा गिर पड़ा तो अकबर को जैसे ही पता चला तो कुछ आगे पीछे न देखते हुए बादशाह ने छलांग मार दी पानी में और बच्चे को उठाकर ले आए। जब तक कि दूसरे नौके में सिपाही वो कूद सके, तब तक अकबर अंदर जाकर बच्चे को निकालकर नौके में भी रख लिए थे। और जब सिपाही कूद पड़े पानी में, तब तक तो बच्चा नौके में आ भी चुका था। इतनी तेजी से अकबर वहां कूद पड़े, हालांकि उनकी उम्र भी ज्यादा थी, पोता था, मतलब इतनी कम उम्र भी नहीं थी उनकी, लेकिन इतनी तेजी से कूद गए। तो जब नौके में आकर अकबर भगवान को शुक्रियादा धन्यवाद दे रहे थे कि भगवान ने बचा लिया हमारे पोते को, और फिर से जब शांत हो गए तो बीरबल ने पूछा, हुजूर आपको क्या पता चल गया, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया? तो अकबर को पता नहीं चला, कौन से सवाल का जवाब, क्या बात कर रहे हो बीरबल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बीरबल ने कहा, आपको याद है कि थोड़े दिन पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके भगवान केवल उनके भक्तों को बचाने के लिए और जो है दुष्टों का नाश करने के लिए खुद क्यों आते हैं, अपने दूतों को क्यों नहीं भेजते, ये अवतार लेने का क्या वजह है उनका? तो वास्तव में आपके इस कार्य से आपने ही आपके सवाल का जवाब दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, इतने बड़े आदमी हैं आप, इतने सारे लोग आपके सामने आके सर झुकाते हैं, और आप इतने बड़े सबके ऊपर राज चलाते हैं, आपका अधिकार देश में सारे देश भर में चल रहा है, और आप उम्र से भी ज्यादा हैं अभी, आपके इतने सारे सिपाही हैं जो कि इस नौके में हैं, इस नौके में हैं, लेकिन जब आपका पोता गिर गया पानी में आप क्यों कूद पड़े? आप तो इतने बड़े बादशाह हैं कि आपके सिपाही तैरना नहीं जानते हैं क्या? वो भी तैरना जानते हैं, लेकिन उनके कूदने के पहले आप ही कूद गए और आपने बच्चे को बचा लिया, ऐसा क्यों, आपने खुद क्यों किया? तब अकबर को पता चला, जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम बहुत बुद्धिमान हो बीरबल, और हर बार की तरह तुमने मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर बड़े अच्छे ढंग से दे दिया है। तो क्या था जवाब बीरबल का? जवाब ये था कि अकबर सिपाहियों को न देखकर, सिपाहियों को कोई उपदेश उन्होंने नहीं दिया, सीधे खुद कूद पड़े। क्यों? अगर कोई साधारण आदमी पानी में गिर पड़ा होता तो सिपाहियों को बोल दिया होता, लेकिन जो बच्चा पानी में गिरा था वो उनका पोता था, बहुत प्रिय था, और क्योंकि एक निकट का प्रेम का संबंध था उस बच्चे के साथ में, इसलिए राजा अकबर ने बाएं दाएं ऊपर नीचे न देखकर सीधे छलांग मार दी पानी में और बच्चे को बचा लिया। तो जहां प्रेम होता है वहां पर आदमी खुद कोई चीज कर लेता है, लेकिन जहां जब प्रेम कम होता है तो हम दूसरों को बोलते हैं जाओ कुछ करो, उनको दे दो। इसलिए जब घर में अतिथि आते हैं तो खुद अपने हाथों से उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर किसी और को भेजेंगे, नौकर को बोलेंगे, इसका मतलब है कि इतना प्रेम नहीं है। जब खुद अपने हाथों से हम अतिथि की सेवा करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम इतना सम्मान दे रहे हैं अतिथि को कि हम खुद उनकी सेवा करते हैं। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। तो खैर, उसीलिए भगवान जब देखते हैं कि मेरे भक्त जो मुझको इतना प्रेम करते हैं, जिनके लिए मैं ही प्राण धन हूं, और जो कि मेरे अलावा और कुछ जानते ही नहीं है ये संसार में, और जिनको मैं भी मेरे प्राण से ज्यादा प्रेम करता हूं, वो जब कष्ट में है और ये दुष्ट लोग उनको इतना परेशान करते हैं, तो भगवान सोचते हैं भला मैं कैसे यूं ही बैठा रहूं, मैं कैसे किसी मेरे शक्ति को भेज दूं कि जाओ मेरे भक्त को बचाओ। तो इसीलिए भगवान खुद आते हैं, क्योंकि प्रेम का संबंध होता है। तो इसीलिए जब भगवान ने देखा कि प्रहलाद को कष्ट हो रहा है, तब प्रहलाद को बचाने के लिए वो आए, न कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। हिरण्यकश्यप का वध करना ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन मुख्य उद्देश्य था प्रहलाद की रक्षा करना। जब हिरण्यकश्यप शक्तिशाली बनने के पहले वो जंगल में गए थे, मंदराचल पर्वत में तपस्या करने के लिए, ऐसी भयंकर तपस्या की उन्होंने कि शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अपने पैरों के अंगुष्ठों पर खड़े हुए, हाथ ऊपर की ओर फैलाए, सर भी ऊपर की ओर सूरज की ओर देखते हुए, आंख फाड़ फाड़ के ऊपर देखते हुए, ऐसे देवताओं के 100 साल तक अर्थात 36,000 मनुष्य के सालों तक उन्होंने तपस्या की, और चींटियों ने कीड़ों ने उनके सारे शरीर को खा डाला। उनके शरीर पे ना तो कोई मांस चर्म खून कुछ नहीं बचा रहा, केवल हड्डियां बची रही, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यप के हड्डियों के अंदर प्राण घूम रहा था, प्राणवायु, इतनी शक्ति थी हिरण्यकश्यप की। देखिए, हमें कोई मच्छर भी काटता है, चींटी काटता है, तो कितना हमें दर्द होता है, कितने परेशान होते हैं, और थोड़ा कुछ खून हमारे शरीर से निकल जाता है, अगर जब डॉक्टर के पास जाते हैं छोटा सा इंजेक्शन मिलना लगता है तो हमें कितना कष्ट होता है। लेकिन हिरण्यकश्यप का सारा शरीर खा डाला था चींटियों ने, लेकिन अपने स्थान से, तपस्या के उस मुद्रा से वो हिले नहीं, वैसे के वैसे रहे, और इस 36,000 साल में उन्होंने एक बूंद पानी नहीं पिया, एक कण भोजन नहीं लिया, ठीक उसी तरह रहे। वो सतयुग का समय था। आजकल के समय 6 घंटे भी उपवास करना बड़ी बात हो जाती है। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने इतना भयंकर जब तपस्या किया, और बाद में जब ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ कि कोई उसकी हत्या नहीं कर पाएगा और उनका सामना करने के लिए भी कोई शक्तिशाली नहीं होगा, तो हिरण्यकश्यप का घमंड इतना बढ़ गया कि सब जगह ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर बड़े अत्याचार करने लगा हिरण्यकश्यप। यहां तक कि देवी देवताओं को भी वश में कर रखा, और सारे ब्रह्मांड का कार्य अकेले हिरण्यकश्यप संभालने लगा। ब्रह्मांड को संभालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया है। इंद्रदेव पानी का कारोबार संभालते हैं अर्थात वर्षा का, वायुदेव हवा या पवन का कारोबार संभालते हैं, अग्निदेव सब चीजों को सुखाने का या जलाने का कारोबार संभालते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताएं अलग अलग ब्रह्मांड के कार्यों को संभालते हैं। जिस प्रकार से एक देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं और उनके नीचे कई मंत्री होते हैं और ये मंत्री अलग अलग तरह के कारोबार संभालते हैं। और हिरण्यकश्यप ने क्या कर दिया कि सारे देवी देवताओं के कारोबार खुद संभालने लगे अकेला। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री बोले फिर और कोई भी मंत्री की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले सारे डिपार्टमेंट सारे विभाग संभालेंगे, रक्षा मंत्री भी हम, खेलकूद मंत्री भी हम, सब मंत्री, विदेश मंत्री हम, सारे मंत्री हम ही रहेंगे और कोई मंत्री नहीं चाहिए। तो हिरण्यकश्यप ने वैसा कर लिया, अकेला सारे ब्रह्मांड को चला रहा था। इंद्रदेव वायुदेव ये सब बेरोजगार हो गए, उनको कोई काम ही नहीं, केवल अपने घर में बैठे रहे। तो इस प्रकार से इतना शक्तिशाली हुआ हिरण्यकश्यप। और जब देवताएं ब्रह्मा जी के पास गए कि ये हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली बन गया है और सारे ब्रह्मांड के नाक में दम बन गया है, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भगवान के पास जाना होगा। और जब ब्रह्मा जी देवताओं के संग भगवान के पास में गए तो भगवान ने क्या उत्तर दिया कि हाँ मैं जानता हूं कि हिरण्यकश्यप कितना दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन आप चिंता नहीं करो, मैं अवतार लूंगा और अवतार लेकर इसकी इसका विनाश मैं अवश्य करूंगा, लेकिन मैं उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं जबकि वो मेरे भक्त प्रहलाद को सताएगा, जब वो अत्याचार मेरे भक्त के प्रति करेगा तब मैं अवतीर्ण होकर हिरण्यकश्यप को खत्म कर लूंगा। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे थे कि मैं तब तक अवतार नहीं लूंगा जब तक कि मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध ना हो। जब उस क्षण मेरे भक्त के प्रति अपराध होने लगता है, मेरे भक्तों को कष्ट कोई देता है, उसी क्षण मैं नीचे आता हूं और मेरे भक्तों को बचाता हूं, ताकि हमेशा आगे भविष्य में सभी को यह सबक मिल जाए कि खबरदार कोई मेरे भक्तों को छुए नहीं, मेरे भक्तों से कोई खेले नहीं, इस प्रकार से कोई परेशान नहीं करे, मेरे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का केवल सम्मान करना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, उनको उनसे सीखना चाहिए कि भक्ति क्या चीज है, लेकिन कभी भी मेरे भक्तों को किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो ये संदेश भगवान ने अपने शब्दों से दिया कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को सताएगा तब मैं आऊंगा। इसका मतलब है कि भगवान अपने भक्तों को कितना महत्व देते हैं, और जब भक्तों के विरुद्ध कोई भी कार्य करता है, जब भक्तों को कोई सताता है, तो भगवान इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये बात भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान नरसिंह देव ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप में आए। हमने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन कोई कह सकते हैं अरे ये सुंदर रूप बड़ा उग्र रूप था, ये तो कितना उग्र रूप, वो भी शेर, गरजता हुआ शेर। अभी आप जंगल में जा रहे हो, अचानक कोई गरजता हुआ शेर आपके सामने आए तो आप क्या बोलेंगे कि ये सुंदर रूप है? नहीं बोलेंगे। तो जब नरसिंह देव ने अपना उग्र रूप प्रकट किया हिरण्यकश्यप के सामने, तो हिरण्यकश्यप को ये रूप सुंदर नहीं लगा, भयंकर एक उग्र रूप लगा, लेकिन प्रहलाद को बड़ा सुंदर रूप लगा। क्यों? क्योंकि जो शेर का बच्चा होता है, वो बच्चा जब शेरनी को ऐसा उग्र रूप धारण करते हुए देखता है तो बच्चे को डर नहीं लगता, बच्चे तो वो अपने माँ के रूप में ही देखता है, लेकिन कोई इंसान आदमी जा रहा होता है उसको लगता है कि साक्षात मूर्तिमान मृत्यु ही मेरे सामने आ गया है। जिस प्रकार से जब एक बिल्ली अपने मुंह में एक चूहे को ले जाता है, चूहे को ले जाती है और चूहे को खा जाती है और फिर उसी मुंह में अपने बच्चों को भी दांत में इधर से उधर पकड़ के ले जाती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे को चलना मुश्किल हो जाता है, तो बिल्ली जब देखती है कि मेरा बच्चा अभी चल नहीं सकता है, बहुत छोटा है, तो उसको उठाना पड़ता है, लेकिन हाथों में तो उठा नहीं सकती है बिल्ली, तो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे उठाती है? अपने दांतों में, दांतों से उसके पीछे से गलत गर्दन पकड़ती है और उसको उठाकर इधर से उधर रख देती है। तो बिल्ली का बच्चा जो होता है माँ के मुंह में उस बिल्ली को सुरक्षा की अनुभूति होती है, प्रेम की अनुभूति होती है। लेकिन जब वही दांत, वही मुंह जब चूहे के गर्दन को पकड़ती है तो चूहे को क्या सुरक्षा और प्रेम प्रतीत लगता होता है? चूहे को लगता है कि ये तो मृत्यु हुई है मेरे लिए। दांत वही है, मुंह वही है, बिल्ली वही है, लेकिन बिल्ली के बच्चे की दृष्टि में और चूहे की दृष्टि में कितना अंतर है? क्यों अंतर है? क्योंकि बिल्ली के बच्चे से, बिल्ली का बच्चा जो है वो बिल्ली से प्रेम करता है, उसने बिल्ली का आश्रय लिया हुआ है। वो जानता है कि मेरी माँ ही मुझको सब कुछ देने वाली है, दूध भी पिलाएगी, खाना भी खिलाएगी, सुरक्षा भी करेगी, सब कुछ माँ ही करेगी, मेरे लिए माँ ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से उसने आश्रय लिया हुआ है। लेकिन चूहा आश्रय नहीं लेता है बिल्ली का, वो तो दुश्मन समझता है बिल्ली को अपना, तो इसलिए बिल्ली उसको खा जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर बहुत बड़ा हाथी हो, विशाल हाथी, लेकिन वो विशाल हाथी अगर बीच समुद्र में चला जाए जब तूफान का समय है और बड़ी बड़ी लहरें आ रही हो, और उन लहरों के बीच में बड़ा बड़ा हाथी भी चला जाए, तो क्या वो बच सकेगा? एक छोटे से आसानी से ये बड़ी बड़ी लहरें हाथी को धो डाल के क्या 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 कर देंगे, उसको चूर चूर कर देंगे। इतना शक्तिशाली हाथी जिसको देखकर यहां सारे प्राणी घबराते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े लहरें जो कि बड़े हाथी को धो डालकर उसको खत्म कर सकते हैं, उन्हीं लहरों के बीच में एक छोटी सी मछली आसानी से पानी के प्रवाह की विरुद्ध दिशा में भी आसानी से तैर सकती है। ये कितनी अद्भुत बात है। क्या आप हाथी की शक्ति और उस मछली की शक्ति को तुलना कर सकते हैं? कहां छोटी सी मछली, उसकी क्या शक्ति है, और कहां विशाल हाथी, उसकी क्या शक्ति? लेकिन इतने बड़े बड़े लहरों का सामना ये छोटी सी मछली आसानी से कर सकती है, और वो भी विरुद्ध दिशा में जाकर, और पानी उसको हटा नहीं सकता वहां से, बल्कि पानी में ही रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है। तूफान आए, पानी शांत हो, पानी विचलित हो, मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मछली ने पानी का आश्रय लिया हुआ है। लेकिन हाथी पानी का आश्रय नहीं लेता, पानी से संघर्ष करता है, सोचता है कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है, इतने बड़े बड़े लहर, ये मेरे दुश्मन हैं, तो मुझे संघर्ष करना चाहिए, मेरे बल से मैं इस पानी के बल को जीत लूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, प्रहलाद कौन थे? 5 साल के बालक। 5 साल के बालक को भला क्या शक्ति होती है? और हिरण्यकश्यप इतना पहाड़ जैसा ऊंचा व्यक्ति और इतना शक्तिशाली कि उसके शरीर को इंद्रदेव का वज्र भी लगे तो कुछ नहीं होता था, बल्कि वज्र को लग जाए लेकिन उसके शरीर को नहीं लगता था, इतनी शक्ति थी। देवी देवतागण केवल हिरण्यकश्यप का नाम मात्र सुनकर कांपने लगते थे। जब हिरण्यकश्यप उनकी भ्रुकुटियों को उठाते थे तो सब लोग कांपते थे। ये थी हिरण्यकश्यप की शक्ति। लेकिन हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु समझते थे, वो सोचते थे कि इनका मुझे इनकी हत्या करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद छोटे से बालक, इतने कमजोर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन भगवान को शत्रु नहीं समझते थे, भगवान को अपने प्रिय आराध्य देव समझते थे, भगवान का आश्रय उन्होंने लिया हुआ था। इसलिए जब भगवान नरसिंह देव ऐसे अद्भुत उग्र रूप में भी प्रकट हुए तो प्रहलाद बिल्कुल डरे नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप तो डर गया, अरे ये कौन आ गया, ऐसे गरजना, ऐसे जोर जोर से हंसना। हिरण्यकश्यप युद्ध करते समय भी आंख बंद करने लगा कि वो सहन नहीं कर पाए ये दृश्य, इतना अद्भुत और भयंकर दृश्य था ये। हिरण्यकश्यप की बात तो दूर है, जब बड़े बड़े देवी देवता भी वहां उपस्थित हुए हिरण्यकश्यप के वध के बाद में और नरसिंह देव को प्रार्थना करने लगे, तो उस समय वो भी सहन नहीं कर पाए इस दृश्य को, घबरा रहे थे। उन्होंने सबने आकर अपनी अपनी स्तुतियां प्रार्थना अर्पण किए नरसिंह देव को, लेकिन फिर भी नरसिंह देव शांत नहीं हुए। हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर बैठे बड़े राजा की तरह, जो कि वो है ही, वो तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के राजा है, तो क्यों नहीं बैठे हिरण्यकश्यप की गद्दी पर? तो बैठे, और क्योंकि उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, जोर जोर से गरजने लगे, गरजना बंद नहीं किया, और ये गरजने की आवाज सुनकर उनके लाल लाल क्रोध से भरी आंखों को देखकर और ये अंथड़ियों की माला और खून उनके सब जगह देखकर ये देवी देवता ब्रह्मा जी शिव जी भी घबराए, आगे नहीं गए। और फिर उन्होंने प्रहलाद से कहा, अरे हम सब तो घबरा रहे हैं, अरे बालक प्रहलाद तुम आगे जाओ, जाओ जाओ, देखो तुम तो इतने भक्त हो, जाओ जाओ आगे जाओ। प्रहलाद को आगे कर लिया, प्रहलाद को बिल्कुल डर नहीं हुआ, कोई बात नहीं हम जाएंगे, सीधे आगे गए फिर नरसिंह देव के पास में और दंडवत किया। घबराए नहीं कि ये गरज रहे हैं, कितने खतरनाक लग रहे हैं, ब्रह्मा जी भी दूर दूर से देख रहे थे, लक्ष्मी देवी भी दूर से देख रहे थे, ये पति का स्वरूप हम नहीं जानते, हम नहीं जाएंगे इनके पास। लेकिन प्रहलाद गए, सीधे दंडवत किया, और जैसे ही नरसिंह देव की दृष्टि प्रहलाद के ऊपर पड़ी, तुरंत उसी क्षण सारा क्रोध खत्म हो गया, तुरंत उनका चेहरा हसमुख हो गया, शांत चेहरे से वो उन्होंने प्रहलाद की ओर देखा और प्रहलाद के हाथ के ऊपर, उनके सर के ऊपर अपने कर कमल रखे, हाथ रखे और आशीर्वाद दिया प्रहलाद को। और प्रहलाद फिर सुंदर सुंदर स्तुतियां करने लगे नरसिंह देव के गुणगान में। तो ये है भक्त और भगवान का संबंध। इसलिए प्रहलाद अभी करोड़ों करोड़ों साल बाद ही उनका गुणगान होता है, और इसलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि देखो प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप का पुत्र था, हिरण्यकश्यप असुर था, प्रहलाद का जन्म असुर कुल में हुआ, और असुर और देवता हमेशा शत्रु रहते हैं, लेकिन प्रहलाद इतना एक विशेष भक्त है भगवान का कि हालांकि उसका जन्म असुर कुल में हुआ, फिर भी असुरों के शत्रु जो कि देवता हैं, जब भी वो भक्तों की और भगवान का गुणगान करते हैं, किसी भी कृष्ण कथा की सभा में जब वो भक्ति की बात करते हैं, बड़े बड़े भक्तों की बात करते हैं, तो अवश्य प्रहलाद की बात होती ही है, और सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में प्रहलाद का उदाहरण देते हैं। हालांकि प्रहलाद एक असुर कुल में जन्मे थे जो कि उनके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी इतने महान भक्त हुए प्रहलाद कि देवतागण भी हर एक भक्तों के सभा में प्रहलाद को एक आदर्श भक्त के रूप में उदाहरण देते थे, और वो भी 5 साल का बालक। तो हम बहुत कुछ सीख तक सकते हैं इस लीला से, भगवान के हर एक लीला से हजारों हजारों सबक या उपदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। केवल लीला सुनना नहीं चाहिए, लीला सुनने से हृदय का मनोरंजन तो होता है, हृदय का शुद्धिकरण तो होता है अवश्य, लेकिन इन लीलाओं से उपदेश भी ग्रहण करने लायक होते हैं। जैसे कि अभी आज आपने जो हमें नरसिंह देव और प्रहलाद की जो संबंध की बातें की, वो तो अवश्य छोटी ही हमने छोटा ही संक्षिप्त रूप में वर्णन किया, वैसे सारा सातवां स्कंध श्रीमद् भागवत का इस लीला का वर्णन करता है, लेकिन आज हमने संक्षेप में ही थोड़ा कुछ सुनाया, लेकिन फिर भी इस संक्षिप्त वर्णन में भी कितना कुछ हम सीख सकते हैं, कितने सारे उपदेश हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम आपसे थोड़े प्रश्न करें, वैसे कभी कभी आप करते हैं प्रश्न हमसे, लेकिन आज आपसे हम प्रश्न करेंगे कि आज इस छोटे से प्रवचन में, इस छोटे से कथा में, इस लीला से हमने कौन कौन से उपदेश ग्रहण किए हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हम सीखे हैं भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, सृष्टि के बारे में, कौन सी चीजें हैं। 10 मिनट में केवल आप एक एक करके कोई बताते जाएंगे कि आपने इस कथा से, इस लीला से क्या उपदेश सीखा है। तो कम से कम जब हम घर जाएंगे तो हमें उपदेशों को बार बार इसका चिंतन मनन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम आए, सुने, भूल गए, चले गए, ऐसा नहीं होगा। तो बार बार इसका चिंतन होगा। तो आप में से कोई बताएंगे एक एक करके कि उपदेश, कौन सी बात सीखने योग्य है हमारे लिए इस लीला से जिसका संक्षिप्त रूप में आज वर्णन हुआ। जा रहे हो? आओ मेरे गोदी में बैठो। प्रहलाद का चुंबन किया, बाल सूंघ लिए और बड़े प्रेम से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद, ये बताओ, तुमने बहुत सारी चीजें अपने पाठशाला में अपने गुरुजनों से सीखी होंगी, सबसे श्रेष्ठ विषय जो तुमने सीखा वो क्या है, उसके बारे में मुझे बताओ। तो प्रहलाद ने जवाब दिया, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिम् आश्रयेत। जो व्यक्ति असत्य में अपने चित्त को केंद्रित करते हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्, जो असत का ग्रहण करते हैं, तो उनका मन, उनकी बुद्धि हमेशा विचलित रहती है, वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो हमें ऐसे जगह को त्यागना चाहिए, हित्वात्मपातम, जहां की कोई आध्यात्मिक संस्कृति या सभ्यता नहीं हो। गृहम अंधकूपम, और जिस घर में आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है वो केवल एक ऐसे कुआं है जिसमें अंधकार है और कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। तो ऐसे घर को, ऐसे स्थान को हमें त्यागना चाहिए, वनम गतो, और हमें वन में जाना चाहिए, वृंदावन में जाना चाहिए, और जाकर क्या करना चाहिए, श्री हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रहलाद ने अपने पिता को उपदेश दिया, आदेश दिया कि हे हिरण्यकश्यप राजा, असुरों में से सर्वश्रेष्ठ असुरवर्य देहिनाम, कि आप क्योंकि एक ऐसे स्थान में रह रहे हैं जो कि अंधकूप है, इसमें कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, इसलिए इस जगह को त्यागिए और आप जंगल में जाइए और भगवान विष्णु का। जब हिरण्यकश्यप ने यह बात सुनी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे मेरा बच्चा और ये ऐसे बातें कर रहा है। तो पहली बार ये घटना हुई तो बड़े जोर से हंसने लगे और शंड और अमरक को बुलाया और कहने लगे, अरे ब्राह्मण, ऐसे लगता है कि मेरे शत्रु यहां इस पाठशाला में आए हैं वेश बदलकर, और मेरे पुत्र इसका चित्त उन्होंने प्रदूषित कर दिया है, इसलिए बड़ा ख्याल रखना, इसको ले जाओ, देखो शायद कोई वैष्णव विष्णु के दूत आ रहे हैं और इसका मन बिगाड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये बढ़िया फर्स्ट क्लास असुर बन जाए, लेकिन कोई आकर इसको फर्स्ट क्लास भक्त बनाने का प्रयास कर रहा है, ये तो विचित्र बात है, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। तो ऐसे हिरण्यकश्यप जैसे कई हैं आजकल के समाज में भी। बच्चे अगर सिगरेट पिए, दारू पिए, इधर उधर करें तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के मंदिर में जाए तो विरोध करते हैं। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं, यहां भी कलयुग में कितने ही हिरण्यकश्यप हैं, लेकिन छोटे मोटे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की उस समय शक्ति कितनी थी, यहां कलयुग में किसी की शक्ति नहीं है। तो फिर ये अध्यापक शंड और अमरक प्रहलाद को वापस ले गए और गुरुकुल में वापस आए तो बड़े मीठे शब्दों में, बड़ी शांति से, प्रेम से वो प्रहलाद से बोलने लगे। ऐसा नहीं कि उनके हृदय में प्रहलाद के प्रति ज्यादा प्रेम था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर कठोर शब्द बोलेंगे तो प्रहलाद शायद सच्ची बात नहीं बताएगा। तो उन्होंने सोचा कि मीठे मीठे शब्द बोलकर जो सच्ची बात है प्रहलाद से बाहर निकाले। तो उन्होंने कहा, अरे प्रहलाद, भला ही हम चाहते हैं
तो हमसे सत्य बोलना, सत्य छुपाना नहीं, झूठ नहीं बोलना, बताओ तो सही तुम ऐसे विपरीत बातें कैसे कर रहे हो जो कि तुम्हारे मित्र नहीं करते। कोई भी तुम्हारे मित्रों में से ऐसी बातें नहीं करता जो कि तुम कर रहे हो अभी। तुम्हारी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट कैसे हो चुकी? दूत यहां पर आ गए हो, विष्णु के दास वैष्णव यहां आकर, हमारे शत्रु यहां आकर तुम्हारा मन बिगाड़ लिया, क्या ऐसा है? तो उस समय प्रहलाद ने जवाब दिया, मैं तो सबसे पहले उन भगवान को नमन करता हूं जिनकी माया शक्ति के प्रभाव में आकर यह संसार के लोग भेदभाव करते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है और वो मेरा मित्र है। वास्तव में ये तो केवल अज्ञान है। शारीरिक अवस्था में आकर ही ऐसे द्वंद्वों की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तव में जो भगवान श्री हरि का आश्रय में जाता है और उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो वो समझ लेता है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं और सभी को भगवान का भक्त बनना चाहिए। इसलिए ऐसे लोग जो वास्तव में पंडित होते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी को अपना शत्रु नहीं समझते और न ही किसी को अपना मित्र, सभी से प्रेम करते हैं वो। लेकिन क्योंकि आप सब अज्ञान में हैं, आप विष्णु को नहीं पहचानते हैं, इसलिए आप ऐसे भेदभाव कर रहे हैं। तो हां, मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूं और मेरा मन उनकी चरण कमलों में इस प्रकार से आकृष्ट हो रहा है जैसे एक लोहा चुंबक लोहा की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जिस तरह से लोहा चुंबक स्वतंत्र नहीं रहता लोहे के सामने। तो यही जो विष्णु है सब प्राणियों के शुभ चिंतक है और इसलिए जीव का स्वभाव है कि वो विष्णु के शरण में जाए, विष्णु की भक्ति करे और विष्णु की माया शक्ति में आकर आप सोच रहे हैं कि हमारे तथाकथित शत्रु ने मेरा मन विचलित कर दिया है। तो वास्तव में यह सच है, तो आपको भी विष्णु के शरण में जाना चाहिए। जब ऐसे प्रहलाद ने कहा तो शंड और अमरक बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे लाओ छड़ी लाओ, तो इस प्रहलाद को अभी लोगों का सामना करने के लिए जो चौथा तरीका है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में वो राजनीति की एक बात कर रहे थे। चाणक्य पंडित भी इसी बात को बताते हैं कि राजनीति में, हालांकि हमें इस क्षेत्र में कोई रुचि नहीं है, फिर भी क्योंकि शास्त्रों में इनका वर्णन आता है कि राजनीति में चार तरीके रहते हैं, साम, दान, भेद और दंड। अगर हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति है, कोई राजा है और प्रजा में, समाज में उत्पात पैदा कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जाने के लिए, तो सबसे पहले राजा को चाहिए शांत, उसको शांत करे मीठे शब्दों से। अरे भाई तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम इतने महत्वपूर्ण हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। अगर वो शांत हो जाए तो ठीक है, नहीं शांत हो जाए तो दान, उसको कुछ ऊंचा स्थान देना चाहिए। अच्छा भाई तुमको ये इलेक्शन के लिए टिकट दे देते हैं, तुमको ये मंत्री का पद दे देते हैं, तुमको वहां कुछ और कार्य दे देते हैं, दान, तो उससे वो संतुष्ट हो जाए दूसरा कदम तो ठीक है। अगर नहीं संतुष्ट हो जाए तो और थोड़ा आगे कदम उठाना पड़ता है। वो क्या है, ये ज्यादा ही कुछ कर रहा है तो इसके लोग जो है, इसके साथी जो है, इसके ग्रुप जो है, उनमें भेद करना, भेदभाव, एक को दूसरे से खिलाफ लगाना, इसको जाके कहा कहना कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा और उसको जाके कहना कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा और आपस में टक्कर लगाकर चुप हो जाना, भेद। जो अंग्रेज ने किया, प्रभुपाद जी कहते थे डिवाइड एंड रूल, यहां सारे भारतवर्ष के लोग थे, उनका भेद करके उनको एक दूसरे के सामने उनको प्रतिद्वंदी बना दिया। तो यह है भेद, और भेद भी नहीं चला तो आखिर में दंड। फिर उनको या तो जेल में डालना या कोई दंड देना या मृत्यु से ही उनको जान से ही मार डालना। तो शंड अमर कहने लगे, ये साम दान और भेद का समय चला गया, अब प्रहलाद को दंड ही देना होगा। तो छड़ी लेकर आए प्रहलाद के सामने। अरे तुम ऐसे क्यों बातें बोल रहे हो, कहां से ये सब सीखे हो? अभी आईना ऐसे नहीं करना, ये ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो खैर शिक्षा फिर से चालू हो गई प्रहलाद की, और पाठशाला ऐसे चलता गया। और एक दिन अपने मां, उन प्रहलाद की मां ने उसको अच्छी तरह से नहलाया, नहलाकर सजाया, अच्छे अच्छे आभूषण इत्यादि पहनाए, और शंड और अमरक ने प्रहलाद को फिर से हिरण्यकश्यप के सामने लाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को देखा और प्रहलाद ने दंडवत किया, प्रणाम किया अपने पिता को। हिरण्यकश्यप के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अरे बेटे, आज फिर से चुम्बन किया प्रहलाद का और सर सूंघने लगे और कहने लगे, हाँ अभी काफी समय बीत चुका है, तुमने बहुत कुछ सीखा होगा अपने अध्यापकों से, तो बताना मुझे जो भी विषय तुमने सीखे हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा विषय है? और हिरण्यकश्यप सोच रहे थे कि अभी शायद कुछ अच्छी बात बोलेगा प्रहलाद, बोलेगा कि किस मैं ये सीखा हूं कि कैसे मेरे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं, कैसे शत्रुओं के बीच में भेद करके उनको आपस में नष्ट करने के लिए मैं कुछ कूटनीति कर सकता हूं, ऐसे कुछ कहेगा प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद ने क्या जवाब दिया, बड़े शांति से गोदी में बैठकर हिरण्यकश्यप के, जिसके भ्रुकुटी के ऊपर जाने से देवी देवता कांपते थे, घबराते थे, उस व्यक्ति के गोदी में बैठकर उसके शत्रु का गुणगान करने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति छिन् नवलक्षणा क्रियेत भगवत अद्धा तन्मन्येऽधीतम उत्तमम। वो कहने लगे, हे पिताजी, अधीतम उत्तमम, जो सारी विद्या है, जो सारा ज्ञान है, शिक्षण है, उसमें से उत्तम शिक्षा उस व्यक्ति के पास है जो कि इन नौ प्रकारों से भगवान श्री विष्णु की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है। सबसे पहला है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना, उनकी कथाएं, उनका उपदेश इत्यादि, उनके बारे में बोलना कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उनके बारे में स्मरण करना सतत, पाद सेवनम मतलब उनके चरण कमलों की सेवा करना, अर्थात हमेशा उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनको अपना गंतव्य स्थान बनाना। और पाद सेवनम का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब हम भगवान के से संबंधित जो भी हैं तदीय उपासनम, उनकी भी हम सेवा करें, जैसे कि यमुना, गंगा, तुलसी देवी, इन सब की जब पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ये भी पाद सेवनम कहलाता है। यहां तक कि वैष्णव सेवा भी पाद सेवनम कहलाता है। तो वैष्णवों की सेवा करना, तुलसी देवी की सेवा करना, ये सब पाद सेवनम कहलाता है। या जब हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, विग्रह का स्पर्श करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं, ये सब पाद सेवा है। तो बेलगाम में राधा गोकुलानंद मंदिर, ये भी एक धाम है, क्योंकि यहाँ पर राधा गोकुलानंद निवास करते हैं, इसलिए ये भी वैकुंठ है, ये भी भगवान का धाम है। तो आप सब अपने अपने घरों से जब यहाँ आते हैं तो आप भी पाद सेवनम कर रहे हैं। केवल जो आने का कष्ट आप करते हैं, वो कष्ट भी आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। यहाँ आने के बाद फिर आप भगवान का दर्शन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हरि कथा सुनते हैं, प्रसाद का सेवन करते हैं, इन सब चीजों से लाभ तो अवश्य होगा ही, परंतु घर से यहां आने का जो कष्ट है वो भी एक सेवा है, ये भी पाद सेवनम कहा जाता है। इसके बाद में अर्चनम, मतलब अच्छा विग्रह की सेवा करना, वंदनम, सुंदर स्तुतियां वंदना करना भगवान के, सख्यम, भगवान के प्रति एक मित्र या सखा की भावना रखना, दास्यम, दास्य रूप में भगवान की सेवा करना, और आत्मनिवेदनम, मतलब अपना सब कुछ न्यौछावर करना भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत होना, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नवधा भक्ति कहलाती है। भक्ति चेन नव लक्षणा इति पुंसा अर्पिता विष्णु। तो जब ये चार, ये नौ चीजें भगवान विष्णु के चरण कमलों में अर्पित किए जाते हैं तो उनको भक्ति कहते हैं। विष्णु स्मरणम, तो जब हम किसी और के प्रति ऐसा करते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण, तो भक्ति नहीं कहलाता है। प्रहलाद ने स्पष्ट शब्दों में इसकी व्याख्या की है। प्रभुपाद जी कहा करते थे ये काली कीर्तन, दुर्गा कीर्तन, ये सब क्या है, ये कीर्तन नहीं है। कीर्तन मतलब हरि कीर्तन, कृष्ण कीर्तन बस। और देवी देवताओं की जो कीर्तन है, स्मरण श्रवण है, वो श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं कहलाता। केवल भगवान के बारे में जो श्रवण कीर्तन होता है उसी को श्रवण कीर्तन कहते हैं वास्तव में। तो हिरण्यकश्यप ने यह सुना, हृदय को बड़ा धक्का पहुंच गया कि अरे दोबारा ये बात। प्रहलाद को जोर से धक्का मारकर अपने गोदी से नीचे फेंक दिया और क्रोधित होकर शंड और अमरक से कहने लगे, अरे मूर्ख, हे ब्राह्मण, तुमने ये सब क्या सिखाया है बकवास मेरे बच्चे को। अच्छा असुर होने के बजाय ये तो मेरे शत्रु विष्णु का भक्त बनते जा रहा है। वैसे मुझे ये लग रहा है कि एक मित्र का वेश पहनकर तुम मेरे शत्रु हो और मेरे ही घर में रहकर मेरे खिलाफ गद्दारी कर रहे हो। तो ये सब सुनकर शंड अमर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख भी हुआ और हिरण्यकश्यप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, आपका इस तरह से कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमने सही चीजें जो असुरों को सीखना चाहिए वही मात्र सिखाया है। ये प्रहलाद ने ये सारी चीजें कैसे सीखे, कहां से सीखे, हम तो नहीं कह सकते। 24 घंटे तो हम पहरा दे रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें प्रहलाद अंदर से ही कह रहा है। उसकी स्वतः से हृदय से जागृत हुई भक्ति के बल पर ये सब ऐसे बोल रहा है। तो उस समय जब हिरण्यकश्यप ने सुना तो सोचा कि ठीक है, शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। तो प्रहलाद की ओर अपना क्रोध केंद्रित कर दिया। अरे प्रहलाद, अगर तुमने ये सब चीजें तुम्हारी पाठशाला में नहीं सीखी हैं, तो बताओ कहां सीखी है तुमने, किसने तुमको सिखाया है। तो प्रहलाद भी हालांकि नीचे गिर पड़े थे, उठे आराम से ठंडे दिमाग से बिना विचलित हुए बोलने लगे, मतिर्न कृष्ण परत मिथो विपद्येत ग्रह व्रतान अदांत गोभीर विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। प्रहलाद बोलने लगे कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल इंद्र तृप्ति के कार्य में लगे हुए होते हैं, अदांत गोभीर, इसीलिए विशतांत मिश्रम, हमेशा वो नरक की ओर चले जाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कृष्णमति, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के प्रति आकर्षण या रुचि कभी भी जागृत नहीं हो सकती है, चाहे अपने ही खुद के प्रयास से करें या दूसरे उनको उपदेश दें या दोनों हो, खुद भी प्रयास करें और दूसरे भी बोलें, फिर भी इनके मन में कृष्ण भक्ति का आना बहुत कठिन है, क्योंकि वो केवल इंद्र तृप्ति में लगे हैं। और इंद्र तृप्ति ऐसा कार्य है जैसे पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना, जो चबाए हुए चीज को बार बार चबाना, ये है इंद्र तृप्ति। जो विषय भोग हमने अनादि काल से अनंत कोटि योनियों में हमने बार बार अनुभव किया है, वही इंद्रिय भोग हम फिर भी मनुष्य योनि में आकर करते रहे तो क्या लाभ है इसका, क्या मिलेगा हमें? कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार से प्रहलाद ने कहा कि कृष्णमती ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी आ नहीं सकती। और आगे प्रहलाद कहने लगे, नते विदु स्वार्थ गतिं हि विष्णुं दुराशयाये बहिरर्थ मानिनः। हे भगवान, हे हिरण्यकश्यप, जो व्यक्ति दुराशया बहिरर्थ मानिनः, इन बाहर के वस्तुओं से उसका मन चमक धमक से प्रभावित हो गया है, उसके मन में गलत इच्छा हो जाती है विषय भोग के लिए, और वो नहीं जानता है कि उसके जीवन का उद्देश्य है कि वो भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना गति बनाए। अंधा यथांगे रूपकी अमाना ते पीश तंत्र्यां उर्दा निबद्धा। क्योंकि ये सारे लोग अंधे लोगों के पीछे जा रहे हैं, अंधे लोग इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे। नेताओं को पता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है और प्रजा को मालूम नहीं है। जब अंधे दूसरे अंधे को मार्गदर्शन करके हाथ में हाथ पकड़ के ले जाता है तो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि दोनों ही इस प्रकृति के कड़क नियमों से सख्त रूप से बांधे गए हैं। और आगे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को बताया कि जब तक महीयसाम पादरजोभिषेकम, जब हम किसी महान वैष्णव के चरणों की धूलि से अपना अभिषेक नहीं कराएंगे, तब तक हम इस भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाएंगे, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं पाएंगे। तो इस ये सब बातें सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी बढ़ गया और जोर से बोलने लगे कि अरे ये प्रहलाद तो बड़ा दुष्ट निकला, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ ये बालक सबसे अच्छा असुर होना चाहिए था इसे, लेकिन मेरे शत्रु विष्णु का भक्त ही बन गया। वास्तव में कहा जाता है कि बाहर का कोई व्यक्ति हो लेकिन अगर उसके अंदर अच्छे गुण हो तो हम उसको पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं, हमारे परिवार का सदस्य भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा, अगर हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ बच्चा अगर हमारे खिलाफ कार्य करे तो उसे भी त्यागना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे हाथ में एक ऐसा रोग आ जाए जो कि सारी शरीर में फैलकर शरीर को नष्ट कर सकता है तो हमें हाथ को काट कर फेंक देना चाहिए सारे शरीर को बचाने के लिए। ठीक उसी तरह से ये प्रहलाद हमारे असुर वंश में एक बड़ी बीमारी की तरह फैल रहा है, इसलिए इसको काट कर फेंकना आवश्यक है। शंड अमरक भी कहने लगे कि वास्तव में ये प्रहलाद तो एक चंदन के वन में एक कांटे के झाड़ के बराबर है। दूसरे शब्दों में शंड अमरक कहना चाहते थे कि असुर वंश ये चंदन के पेड़ की तरह है, सारे असुर, हिरण्यकश्यप सबसे बड़ा चंदन का पेड़ और सारे जो विप्रचित्ति और दधिमुख के सारे हैं ये सब चंदन के पेड़ हैं और प्रहलाद इन सब के बीच में एक कांटों का पेड़। और शंड अमर कहने लगे कि चंदन के पेड़ को काटने के लिए परशु का इस्तेमाल किया जाता है और ये परशु विष्णु है और ये परशु का जो हैंडल होता है वो कांटों के पेड़ से बनाया जाता है, तो इसलिए विष्णु ये परशु है जो कि असुर वंश को की हत्या करने के लिए ये प्रहलाद नाम के कांटों के झाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कांटे के झाड़ को काट के फेंक देना चाहिए। हिरण्यकश्यप बोलने लगे, इसलिए हे असुरगण इस प्रहलाद की हत्या की जाए अभी की अभी इसी क्षण। तो वहां के भयंकर भीषण जो असुर थे वहां, देखने से ही आदमी कांप जाए, इतने इतने भयानक दिखने में ये थे। उनकी बड़ी बड़ी दांतें और लाल लाल आंखें और ताम्र रंग के उनके बाल और आंखें, और बड़े कठोर शब्द बोलते हुए प्रहलाद के सामने आए, मारो इसे, काटो, चीर चीर कर डालो इसे, और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने लगे। लेकिन जितना भी वो प्रहार क्यों ना करें, प्रहलाद का एक बाल भी बका नहीं, प्रहलाद को कुछ ही नहीं हुआ। तो हिरण्यकश्यप ने अपने असुरों को और आदेश दिया, और असुरों ने बहुत प्रयत्न किया प्रहलाद की हत्या करने के लिए। प्रहलाद को गरम तेल के एक पात्र में डाल दिया, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को आग में फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। एक पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया, लेकिन स्वयं विष्णु ने आकर उनकी रक्षा की। प्रहलाद को एक पागल मतवाले हाथी के पैरों के तले लग दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहरीले सांपों के गड्ढे में डाल दिया, कुछ नहीं हुआ। तलवार से, त्रिशूल से आक्रमण किया, कुछ नहीं हुआ। जादू टोना का प्रयोग किया, कुछ नहीं हुआ। इतना सब होने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ज्यादा से ज्यादा क्रोधित और चिंतित भी होने लगे। और एक दिन हिरण्यकश्यप अपने आप से बोलने लगे, ये प्रहलाद जो मेरा 5 साल का बेटा है, ये बड़ा विचित्र लड़का है। इसके अंदर ऐसी निर्भयता मैंने आज तक नहीं देखी है। केवल है 5 साल का बालक, लेकिन इसको इतनी साहस कहां से मिलती है, इतनी शक्ति कि मैं भी इस शक्ति का पार नहीं कर सकता। ये बच्चा मेरे से ज्यादा भी शक्तिशाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही बच्चा मेरे मृत्यु का कारण हो सकता है। मैंने हर दृष्टि से प्रहलाद की हत्या करने का प्रयत्न किया है, मेरे साथ में मेरे शक्तिशाली साथियों ने भी प्रयत्न किया है, लेकिन इसका एक बाल भी नहीं पके जा रहा है। तो क्या किया जाए, ये बड़े चिंता की बात है। तो ऐसे सोचते सोचते जब बड़े निराश हो रहे थे हिरण्यकश्यप, उस समय शंड और अमरक आए और कहने लगे कि हे हिरण्यकश्यप, हे असुरों के राजा, आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो ब्रह्मांड के राजा हैं। आपके भ्रुकुटि के हुलने हिलने से ही देव देवता कांपते हैं। ये साधारण 5 साल का बच्चा क्या नुकसान कर सकता है आपको। हमारा सुझाव यह है कि वरुण देव के पास से इसको बांध दें और इसका शिक्षण जारी रखें, और फिर आगे चल के जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अभी जो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो बुद्धि सुधर जाएगी, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, और फिर से वो प्रामाणिक असुर बन जाएगा, जैसे कि आप आशा करते हैं। तो फिर से हमें प्रयत्न करने का अवसर दीजिए, हम उसे अच्छे से अच्छा असुर बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो हिरण्यकश्यप के पास और कोई चारा तो था नहीं, तो कहा ठीक है। और फिर से शंड और अमरक ने प्रहलाद को अपनी पाठशाला में ले लिया, और प्रहलाद जब भी मौका मिलता था, जब शंड और अमरक अपने घर में जाते थे और अपने मित्रों के संग उनको थोड़ा समय मिलता था, तो उन सबको बुलाते थे और दिव्य उपदेश करते थे। छोटे बच्चे थे सब, सभी लोग खेलना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद बोलते थे नहीं नहीं अभी खेल का समय नहीं। बच्चे कहते थे कि अभी तो हमारे खेलने की उम्र है, अभी आप ये सब दर्शन वर्शन बोल रहे हो, भक्ति भक्ति की बात कर रहे हो, ये हमारी उम्र की बात नहीं है। फिर प्रहलाद ने उनको इर्द गिर्द अपना बिठाया। सभी लोग प्रहलाद से बहुत प्रेम करते थे, बड़े मासूम थे सारे बच्चे। हालांकि वो असुरों के बच्चे थे, लेकिन प्रहलाद का प्रभाव इतना था कि सभी बड़े निर्मल कोमल थे। सब प्रहलाद को घेर कर बैठे और प्रहलाद के मुख को बड़े आतुरता से उसकी ओर देखने लगे, और ऐसे लगता था जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है। और फिर प्रहलाद ने अपना उपदेश आरंभ किया, और प्रहलाद ने क्या उपदेश दिया इन बच्चों को, वो आज हम शाम को सुनेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ ये सस्पेंस हम शाम तक रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? बहुत थक गए सब लोग, सभी लोग इतने आतुरता से आनंद से सुन रहे थे। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि बिना सोए हुए बड़े ध्यान से आप सब इस कथा का श्रवण किए। प्रश्न है कोई?
हरे प्रभु जी, प्रहलाद महाराज की जो माता की कयाधु के बारे में जानना चाहिए।
वैसे कयाधु